इस्कान का शुरू शुरू में जब प्रचार हुआ है इस क्षेत्र में, और उसका मूल केंद्र था गुरुरा, तो उसमें शुरू शुरू में ज्वाइन करने वाले इस्कान में बहुत से भक्त हुए, उसमें से एक भक्त आए हैं। खड़े हो जाइए, दर्शन दीजिए। गोपी प्राण धन दास, प्रारंभ है, इसे भक्त हैं, उनका हम स्वागत करते हैं कि वे इस कथा में आए। धनबाद में रहते हैं, कोल इंडिया में सर्विस करते हैं, स्वयं कथा कहते हैं, गाते भी बहुत अच्छा है। आज जो पहुंचे, जैसे इन भक्तों का कीर्तन भजन सब याद आता है कितना मेहनत किया है शुरू शुरू में, 1975 से ही चालू करके, और 1975 से अब तक कितना वर्ष हुआ है, 31 वर्ष भक्त हैं, कीर्तन गाते हुए नाचते हुए इतना लंबा समय बीता है। तो इन भक्तों को धन्यवाद है, भगवान कृष्ण से संबंध किए हैं, प्रेम निभा रहे हैं। उस पर भी सूरत उनको डांट रहे थे, वो हिटलर शर्मा कहते थे, अब क्या करते हैं, क्यों नहीं छोड़ करके इधर आते हैं कथा सुनने। महाराज युधिष्ठिर श्री नारद मुनि से गृहस्थों के पारमार्थिक कर्तव्य के विषय में प्रश्न किए हैं, क्या करने से संसार सागर तरेंगे, दुख मिटेगा, भगवान से प्रेम बढ़ेगा। तो श्री नारद जी इस बात पर बहुत जोर दिए, शुरू में ही कहे कि श्रीमन भगवतो अभिक्षणम अवतार कथा अमृत, भगवान ने के अवतार कथाओं को जो अमृत के समान है हमेशा सुनना चाहिए। गृहस्थ के लिए अगर सबसे बड़ा काम नारद जी ने बताया तो यही बताया, और इमीडिएट बताया, तत्काल, और उसी की आवृत्ति में सब जगह किए। साधु का कर्तव्य तो है ही, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी, कि वे भगवान की कीर्ति गावे, जप करें, भगवान को प्रणाम करें, पूजा करें, लेकिन इसमें गृहस्थ के लिए भी उतना ही जरूरी है। श्रीमन शब्द कहते हैं, गृहस्थ को बहुत कम फुर्सत है कि वो स्वयं पढ़े, और कुछ भी बात है स्वयं पढ़ करके समझ भी नहीं सकते हैं, परंतु सुन करके समझ सकते हैं। और श्रवण ऐसा काम है कि एक व्यक्ति बोलता है और हजारों लाखों लोग सुन सकते हैं आसानी से, सुनने में कोई परिश्रम नहीं है। कीर्तन करने में, जप करने में तो परिश्रम लगता है कि है लोगों को, किसी को जप करने के लिए कहा जाता है तो लगता है पहाड़ चढ़ गया सिर पर, करना नहीं चाहता। श्रवण करना सहज सुगम है, यदि हम लोग इतने लोगों को कहें कि आप जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, तो नहीं करेंगे, लेकिन सुनने के लिए देखिए इकट्ठा हो गए। ये भारत की शैली है, भारतवर्ष की यही परंपरा है सुनने के। सुनने से जितना जल्दी ज्ञान होता है, भगवान का अनुभव होता है, उतना और क्रियाओं से नहीं होता है। विदेश की स्थिति दूसरी है, वहां पर इतने लोग कभी नहीं जुट सकते हैं, जुटते हैं तो वही स्पोर्ट्स में कुछ खेल कूद होता है, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम है उसमें जुटते हैं, और बहुत हैवी फीस दे करके जुटते हैं। हमने देखा एक जगह न्यू ऑरलियंस में अमेरिका का एक नगर है, 50,000 आदमी के बैठने की जगह है और किसी खेल में लोग जुटते थे। और मैं पूछा कि भर जाता है? हाँ भर जाता है, एक एक आदमी से $100 लिया जाता था। उस नॉन सेंस खेल को देखने के लिए लोग देते हैं। 4,500 रुपया एक दिन का खेल देखने के लिए देते। इस तरह से मानव समाज अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। परंतु अगर धार्मिक डिस्कोर्स प्रवचन सुनने की बात हो जाए तो यदि 500 आदमी जुट जाते हैं तो इसको बड़ी सफलता समझिए। वही मुरारी बापू जी जब इंडिया में कथा कहते हैं तो 50,000 70,000 लाख आदमी जुट जाते हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं कथा कहते हैं, तो मैं भी उनकी कथा में गया हूं, तो मुश्किल से 2,000 आदमी 1,500 आदमी रहते हैं खूब, और सारे गुजराती। इतना जोरदार वक्ता के जिसका भारत में इतना लोग जुटते हैं वहां ये संख्या है। हम भी कथा कहते हैं तो हजारों लोग जुट जाते हैं भारत में, कभी कभी 1,500 कभी 2,000, बॉम्बे में 5,000 जुटते हैं। लेकिन विदेश में 50 आदमी खूब जुटते हैं तो 250-300। लेकिन कहते क्या है लोग, हाँ आज 600-700 आदमी जुटे थे, गिनते नहीं है, बिना गिने कह देते हैं। एक बार बॉम्बे में कथा हो रही थी शुरू में, मैं हॉल में गिन लिया, बड़े रूम में कथा हो रही थी, 297 आदमी बैठे थे, खच हॉल भरा हुआ लगता था, और बाहर लगभग 70-75 आदमी भरे थे, मान लीजिए 100 आदमी, तो सब मिला करके 400 आदमी थे कथा में। शुरू शुरू के बाद जुहू की कह रहा हूं, 400 आदमी थे। तो जो व्यक्ति आयोजन किए थे मंदिर के तरफ से, तो वो हमसे कहते हैं कथा के बाद, महाराज आज 800-900 जनता जुटी थी कथा में, मैं तो गिन लिया था। तो मैं कहा कि नहीं, 800-900 कहां जुटे थे, मैं गिना था, भीतर 297 थे, मैं लगभग 300, और मैं कहा कि बाहर कितने होंगे, तो उस स्वयं कहते हैं कि बाहर 60-70 होंगे। तो मैं कहा अच्छा, तो मतलब 400, तो वो कहते हैं गिनने पर तो कम हो ही जाएंगे। गिनने पर कम हो जाए तो आप क्या बॉर्डर कर रहे हैं, वासुदेव चौधरी जी का गिनने पर तो कम हो जाएंगे, गिनने पर कुछ जमीन में समा जाते हैं लज्जा से, क्या है जमीन में धस जाते हैं, वो गिनती में नहीं आते हैं। लेकिन पहले की ही परंपरा है हमारे भारतवर्ष में, 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में कथा सुन रहे थे, और उसमें माइक साई की कोई जरूरत नहीं थी। पहले के लोग बोलते थे शुद्ध गोस्वामी आदि मेघ के समान, मेघ गर्जन के समान भगवान बोलते थे, ऋषि लोग बोलते थे, आवाज बादल की तरह होती थी, बादल गरजता है आकाश में कई किलोमीटर में सुनाई पड़ता है, तो वो कोई माइक स्पीकर लगाकर थोड़े गरजता है, बादल के गरजने से कितनी दूर आवाज जाती है, ऐसे लोगों की बोली थी, भगवान की कथा कहते थे। तो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में जुटते थे। एक बार एक भक्त भारतवर्ष में लगा कहने, इतने लोगों का अकोमोडेशन भोजन तो कहां से हो रहा था, ये वास्तव में राजकीय व्यवस्था थी, वहां सरकार की व्यवस्था थी। महाराज जन्मेजय के राज्य काल में ये सब हुआ था। परीक्षित महाराज जो कथा सुने तो उसके लगभग 200-250 वर्ष के बाद ये कथा, नहीं नहीं ज्यादा पता, कुछ ही वर्ष के बाद ये कथा हुई थी। सूत गोस्वामी ने कहा था नैमिषारण्य में, तो सारी व्यवस्था सरकार करती थी। आज के युग में सरकार कुछ नहीं कर रही है भक्ति के लिए, ऐसे कुछ कर रही है आदमी के जीने के लिए, लेकिन भक्ति के विषय में कुछ नहीं। आप जो भी मानिए उस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। यह देखिए, भगवान से प्रेम करने के लिए सरकार नहीं है। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया अमेरिका में कि स्वामी जी आप बार बार कहते हैं कि बहुत क्राइम है, क्राइम है, क्राइम कैसे मिटाया जा सकता है, दुनिया से क्राइम अपराध कैसे मिटाया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी कहे कि केवल दो काम से अपराध मिट जाएगा। क्या करने से? प्रभुपाद जी कहे भगवान का प्रसाद बांटने से। भगवान को भोग लगा हुआ जब भोजन बांटा जाता है प्रसाद, तो वो इंजेक्शन का काम करता है शुद्ध करने में, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि क्राइम करने की या शुभ कर्म करने की कब होती है? जो हम जो चीज खाते हैं उसके कारण। भोजन से ही शरीर बना है, मन बना है, बुद्धि बनी है। तो जब भगवान का प्रसाद खाते हैं तो शरीर ही प्रसाद हो जाता है, तो उसमें से अशुभ विचार आदि सब निकल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रसाद बांटने से और भगवान का नाम लेने से, कीर्तन करने से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सरकार को चाहिए कि जगह जगह कीर्तन की व्यवस्था करे और एक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्ट होना चाहिए सरकार में, जो प्रसाद ह्यूज बृहद मात्रा में बना बना करके बांटा करें पूरे देश में। ऐसा डिपार्ट है तुम्हारे यहां? नहीं, दुनिया में किसी भी देश में डिपार्ट नहीं प्रसाद बांटा जाए, कहीं नहीं, और न कीर्तन कराने की व्यवस्था। जनता स्वयं प्रसाद बनावे, बांटे और कीर्तन की व्यवस्था करे, कथा की व्यवस्था करे, सरकार इस विषय में कुछ नहीं करेगी। ये सरकार तब क्राइम कैसे रुकेगा? तब तो चोर बदमाश सब पैदा होंगे ही, और वे भी जो सरकार में है और प्रसाद नहीं खाएंगे तो उनके अंदर दुर्विचार के अलावा और कुछ नहीं आएगा। वो अंडा खा करके और मांस खा करके कभी शुद्ध विचार आ सकता है? कोई भी व्यक्ति जरा देखे, उसमें हिंसक विचार आएगा, दूसरों को मारने का, दुख देने का विचार, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, उसमें हिंसक विचार आएगा। ये कुछ लोग प्रचार करते हैं, कहते हम धार्मिक हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, तो वे क्या कहते हैं? मनुष्यों की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, पशुओं को खा जाओ, क्योंकि उनमें सोल आत्मा नहीं है, ऐसे कहते हैं। एनिमल्स हैव नो सोल। कहते नहीं भाई, पशु को मत मारो, पशु का मांस मत खाओ। तो कहते हैं पशु में जीव नहीं है। बुद्धू कहेंगे जीव का लक्षण तुम ही जानते हो, क्योंकि साधारण व्यक्ति भी समझ जाएगा कि जिस शरीर में कोई हलचल है, सुख दुख का प्रकाशन है, पशु भी रोता है, पक्षी भी रोता है दुख पड़ने पर, और सुख मिलने पर वो भी हर्षित होता है, नाचता है, है कि नहीं? पशु सुखी है, किसी को चाट रहा है या किसी से आग्रह कर रहा है कि तुम अपना हाथ सहलाओ, और उसको अगर कोई मारे तो दुखी दुख का अनुभव करता है, करता है कि नहीं? तो इतना पहचानने की शक्ति नहीं है कि पशु में भी जीव है, और वो मूर्ख है आदमी, वो धूर्त है, ऐसे कहते हैं कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पशुओं को खा खा करके और तुम धर्म का प्रचार कर रहे हो। जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म धर्म है ही नहीं। तो इस तरह की बातें लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों क्राइम बढ़ रहा है? क्राइम का मतलब केवल चोरी बदमाशी ही नहीं हुआ, क्राइम का अर्थ है मांस खाना। जो मांस खा रहा है वो खुद क्रिमिनल है, उसे दंड मिलना चाहिए। वास्तव में ये पहले के राजर्षियों का नियम था, यहां तक कि हमारे इसी देश में जब इम्परर बादशाह अकबर था, उसने पूरे राज्य में हुकूमत लगा दिया था कि गोवध नहीं होगा, उसके राज्य में गोवध नहीं होता था। लेकिन अब देख ही रहे चार, तो पशुधन समाप्त हो गया लगभग, पशुओं पर इकोनॉमिक्स डेवलप करते, आर्थिक व्यवस्था निर्भर है भारत की, लेकिन पशु नहीं रहे, बैल नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये नहीं रहा, सब खा गए दुनिया में। कसाई लोग काटते हैं और व्यापार करते हैं, अरब कंट्री में इधर उधर कंटेनर में भेजते हैं और मांस बेच करके तेल खरीदते हैं, गाय का मांस बेच करके और उधर से तेल मंगाते हैं, ये व्यापार चल रहा है। फिर भी कितना पूज करते हैं लोग, हम सदाचारी हैं, हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। इस तरह से निर्दय लोग हो गए। कारण यही है कि लोग भगवान का प्रसाद नहीं खाते हैं। भगवान का प्रसाद खाने पर चित्त बदल जाता है, दया आती है, सदाचार जीवन में आता है। तो भगवान का प्रसाद खाना आवश्यक है। यह कोई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। वास्तव में देश में सीधा नियम बनाना चाहिए, कोई मांस नहीं खा सकता। कुछ लोग कहते हैं क्षत्रियों के लिए मांस जरूरी है और सेना के जवानों के लिए मांस जरूरी है। अच्छा ठीक है, ये मान भी लिया जब सेना के जवानों के लिए मांस जरूरी है, तो तुम क्या सैनिक हो क्या? उसके लिए जरूरी है ना, कि तुम्हारे लिए जरूरी है नहीं, पूछा जा सकता है ना भाई, उसमें लड़ने का उत्साह आएगा, रजोगुण आएगा। ठीक है, अगर एक दूसरे से मान भी लिया जाए तो वह भी मांस खाने का आदेश जो है शास्त्रों में दूसरे तरफ से, कि जाओ जंगल में बारा या मृग पकड़ लाओ, तो उसको पकड़ने में जो मिलिट्री होगा वो फुर्तीला बनेगा। क्षत्रियों को इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है, मांस खाने की कभी शास्त्र नहीं इजाजत देता है। तो इस प्रकार भगवान का प्रसाद खाने से और भगवान का नाम कीर्तन करने से व्यक्ति पुनीत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यह एक महीने के अंदर क्राइम रुक जाएगा सारी दुनिया से, अगर केवल प्रसाद बांटा जाए और कीर्तन किया जाए। सीधा वो बातें छपी हुई हैं। तो पशु हत्या एक जघन्य पाप हो रहा है। कई बार किसी मनुष्य से पूछा जाता है कि संसार में इतना दुख बढ़ रहा है, ये हो रहा है, मनुष्यों की हत्या बढ़ रही है, देश देश में, राष्ट्र राष्ट्र में युद्ध हो रहा है, नाहक युद्ध हो रहा है, कोई कारण नहीं है, कुछ कारण नहीं है युद्ध का। कारण इतना ही है कि तुम इस धर्म को मानते हो, हम इस धर्म को मानते हैं, इसीलिए जनता में धर्म के प्रति बिल्कुल घृणा हो गई है। धर्म से जितना बड़ा बड़ा युद्ध हुआ संसार में, उतना युद्ध दूसरे कारण से नहीं हुआ। हम इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म के चार मूल नियम हैं, उनको माना जाए। कोई भी किसी भी कहे हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, लेकिन धर्म का सिद्धांत है ना, वो है सत्य, तप, दया। और सत्य और तप, शौच और दया, ये धर्म के चार चरण। कोई धर्म माने, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई हो, इन नियमों को मानना चाहिए। जहां बद्ध है, जहां किसी को दुख दिया जा रहा है, और वहां पर कोई व्यक्ति कहे कि इसमें जीव नहीं है इसलिए इसको मारने में दोष नहीं, कैसे उसकी बात को सुना जा सकता है? एक बार की बात है, मैं भभुआ में उतरा था, कुदरा में याद नहीं है, दो क्रिश्चियन जा रहे थे कहीं अधौरा की तरफ, विदेश से आए थे, बातचीत होने लगी। हाँ, भभुआ में उतरा था, कुदरा आना था, कुदरा से उनको अधौरा नहीं चेनारी की तरफ जाना था, तो बातचीत होने लगी। तो मैं किताब लिया था प्रभुपाद जी का, पांचवा स्कंद भागवत, तो उसमें ये बताया गया था कि पशु को मारने वाला इस नरक में जाता है, एक बैठा था मेरे पास, बात होने लगी इंग्लिश में। वो पूछा ये क्या है, तो मैं कहा कि ये दिखाया गया है कि जो पशु का वध करता है उसको नरक में जमराज के दूत किस प्रकार काटते। तो कहता है लेकिन पशु में तो सोल नहीं होता है, वो बात करने लगा। तो मैं बहस किया, क्यों कहते हो कि पशु में सोल नहीं है, क्या सोल का लक्षण है, जीव का लक्षण क्या है ये बताओ, और उस लक्षण का क्या अभाव है इसमें। तो वो कहता है वो तो कुछ समझता नहीं है, ये नहीं करता, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसके गर्दन पर छुरा चलाया जाए तो चिल्लाएगा नहीं। मैं कहा और छुरा चलता है तब तो देख करके कि छुरा हमारे सामने आया तो वो भागेगा नहीं, छुरा देख कर और पुकारेगा नहीं किसी को, जैसे माना जाता है इसमें सोल नहीं है। तो मैंने उदाहरण दिया, यदि छोटा सा तुम्हारा बच्चा है और तुम उसको चाकू दिखाओ तो वो तो समझेगा भी नहीं कि क्या चाकू होता है क्या होता है। इसलिए मान लोगे कि तुम्हारे बच्चे के हृदय में शरीर में सोल नहीं है, ये मान लोगे? बच्चा तो कुछ भी नहीं समझता है, बच्चा को तो लेकर के कोई कुआं में पटक दे तभी नहीं, पटकने से पहले नहीं कहेगा कि अरे मान मुझे मत पटको मत पटको, तो इसलिए मान लिया जाएगा। तो वो निरुत्तर हो गया, लेकिन कहता है, फिर कहता है हमारे धर्म में ऐसा माना गया है कि पशुओं में जीव नहीं होता है, तुम्हारे धर्म को धिक्कार है, धर्म है गाय खा करके और तुम कहते हो कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, या बकरा हो भैंस हो कुछ भी हो, हिंदू लोग भी बहुत मांस खाते हैं, आजकल मांस खाने की परंपरा बहुत बढ़ती जा रही है। हम लोग ट्रेन में देखते हैं, वायुयान में देखते हैं, जहां मान लीजिए इंडियन ज्यादा है सब कुछ, तो वह चलता है ना भेज नॉन भेज, तो ज्यादा नॉन भेज खाने वाले नॉन भेज है, इनको नॉन भेज है मतलब मांसाहार ज्यादा है। तो इस प्रकार से मनुष्यों की जो दुर्दशा हो रही है, उनकी चेतना दूषित हो रही है, यह बहुत ही दुखमय बात है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ऐसे ही चेतना गिरती जाएगी, लोग मांस खाएंगे और मनुष्यों की हत्या करेंगे और पशुओं की हत्या करेंगे, आगे क्या होगा, आगे होगा क्या? कई महापुरुष तो कहते हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर गाय का खून गिरेगा तो मनुष्य गाजर मुल्ली की तरह काटे जाएंगे। ये स्थिति आ रही है, अभी आ रही है। हम लोग टीवी पर देखते हैं, मैं जब लंदन में था तो देखा टीवी पर दो देश की लड़ाई, और इतनी भयंकर लड़ाई थी इसराइल में और लेबनान में, बेरूत शहर में मैं देख रहा था, वो भयंकर लड़ाई। केवल यही नशा छाया था। हम इस धर्म को मानने वाले हैं, तुम उस धर्म को मानने वाले हो, तुम हमारे क्षेत्र में इसने ये किए, तुम हमारे क्षेत्र में ये किए। इतनी भयंकर लड़ाई। तो यदि इस तरह से अशुद्धि रही चेतना की, चेतना बिगड़ी, तो फिर विनाश के अलावा क्या होगा? विनाश होकर के ही रहेगा। सब तरह की चेतना बिगड़े, चेतना बिगड़ने से आदमी में सदाचार की कमी हो जाती है। महात्मा गांधी जी से पूछा गया था शुरू में कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो आप सबसे पहले कौन काम करना चाहेंगे? महात्मा गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्र होगा तो सबसे पहले मैं शराब बंद करूंगा। कहा इसको पूछने पर क्यों, तो उन्हें महात्मा जी ने कहा था कि इससे मनुष्यों के मति भ्रष्ट हो जाती है, उसके जीवन में दुराचार फैलता है, अर्थ की हानि तो होती ही है, कई प्रकार के दुर्विचार आते हैं। आज भी सरकार कम से कम ड्राइवरों को मना करती है, जहां तहां लिखा जाता है रोड पर डोंट मिक्स ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग। ये ड्राइविंग और ड्रिंकिंग को मिक्स मत करो, एक साथ मत करो। और जितनी भी घटनाएं होती हैं, एक बच्चा भी कह देता है अरे पियले होखी, अगर देखा कहीं ट्रक उल्टा हुआ कहीं कुछ है, तो बच्चा भी कह देता है साला पियले हो, ऐसे कह देता है। सरकार मना करती है, लेकिन सरकार का मना करना तो वो अजीब ढंग से है। सरकार तो एक तरफ से लाइसेंस देती है सब, और दूसरे तरफ कहती है शराब करे खराब, जो शराब का हुआ शिकार उसने फूंक दिया घर बार। ये सरकार समाज कल्याण विभाग से सब निकलता है, समाज का कल्याण। शराब मत पीजिए, जो शराब मत पी, शराब बनाते क्यों हो, क्या जरूरत है खराब करने के लिए? सब बनाते हैं और सिगरेट बनाते हैं, व्यापार करते हैं, सिगरेट पर धीरे से छोटे अक्षरों में लिख देते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो किस लिए पीने के लिए बना, किस लिए बना रहे हैं, बेच रहे हैं? तो इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस है हेल्थ के लिए, हानि करता है। इसका मतलब कि सरकार जनता के स्वास्थ्य को मटियामेट करना चाहती है ना? उधर कहते पियो, सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, हम ये दे रहे हैं आपको सस्ते दामों में, बहुत मस्ती आएगी। और नीचे लिखते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, छोटा अक्षर में लिखते हैं जिससे लोग भड़क न जाए। क्या ठग हैं दुनिया में, किस तरह से धूर्त, इस तरह से व्यापार करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा सिगरेट बिके, हमको पैसा मिले, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हम पर दोष न रहे कि इसको हानि हुई चाहे कोई मारा, इसलिए लिख देते हैं जहर है मत पियो, लेकिन इतना छोटा लिखते हैं कि लोग ध्यान नहीं देते हैं। और लोग इतना बुद्धू हैं, बेवकूफ हैं, कि मोटा भी लिखो तब भी पी जाते हैं। जानिया सुनिया विष खाई नहीं, जानते हैं पढ़ते हैं ये विष है, खराब करता है। और दिल्ली में मैं देखा समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग इतना लिखा है शराब नहीं पीने के लिए, इतना लिखा है, लेकिन सुविधा है पिलाने की। ये बात मैं जो कथा के तौर पर कह रहा हूं, तो इतना स्टैंडर्ड गिरा है जनता का कि कभी कभी ये बात कहना आवश्यक, इधर भी ऐसे लोग होंगे ही जो चलाते रहते होंगे बोतल, पीते रहते हैं। उनका मन भ्रष्ट, उनकी बुद्धि भ्रष्ट, सद्विचार नहीं रहता है। ये जो कथा का आयोजन किया जाता, मैं इस बात पर बोला कि हमारे भारतवर्ष में श्रवण पर बहुत जोर था और यहां नारद मुनि श्रवण पर बहुत जोर दी है। अभी ये बता रहे थे नटवर दास, इनके समय में ही उड़ीसा में प्रत्येक गांव में भागवत टुंगा होता था, चबूतरा गांव में हम लोग भागवत पढ़ते थे। और वो अब समाप्त हो गए है, अभी क्लब बना दे। और हम लोग भी देखे हैं कि इधर गांव में लोग रामायण के का गान करते थे, मंगलवारी या सोमवारी अलग अलग, कम से कम सप्ताह में एक दिन तो लोग जुट करके गाते ही थे, तो साल भर में 50 दिन तो हुआ ना कम से कम, 50 दिन रामायण गाया जाता था, कीर्तन किया जाता था। और वहां भी वो हिटलर शर्मा बताते हैं कि आजकल महाराज रामायण गाते हैं, तो रामायण गा करके दोहा पूरा होता है तो चिलम पीते हैं, गंजा पीते हैं। वो तो गा करके बताते हैं कि एक चौपाई गा करके उसके बाद दोहा पूरा होता है, तब कभी कभी दोहा पूरा होता है, चाहे पांच दोहा पूरा होता है, तो अपना खैनी उनी खाना तो उसमें एकदम मतलब मामूली चीज है, लेकिन गांजा चरस खूब पीते। खैर वो भी पी करके अगर गावे तब भी ठीक है, भगवान का कीर्तन करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे टीवी जो है, टेलीविजन सबको छीनता जा रहा है, छीनता जा रहा है। और गांव में भी लोग अब भजन नहीं कर रहे हैं, कीर्तन नहीं, रामायण गान नहीं, अब टेलीविजन देखते रहते। और अभी नहीं कि टेलीविजन पर कोई बहुत धार्मिक प्रवचन ही सुने, तो न्यूज के बहाने लोग देखते रहते हैं। हम कहते हैं आप टीवी, आप टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं? नहीं, यही न्यूज देख लेते हैं। आप देखते हैं कि न्यूज देखने में ही बीच बीच में कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कई प्रकार के श्रृंगार वासना को उभारने वाले दृश्य दिखाते हैं, नाश कर रहे हैं लड़कों का, लड़कियों का, समाज का नाश कर रहे हैं। तो इस दशा में यदि किसी गांव में भगवान के भजन की व्यवस्था हो, खास करके श्रवण की, कथा का आयोजन किया जाए, लोग सुने, भगवान का प्रसाद खाएं और भगवान का कीर्तन करें, यही है धर्म। कली काले धर्म नाम संकीर्तन सार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन ही धर्म का सार, धर्म का इसेंस है, असली चीज यही है, असली धर्म यही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार में कई देशों में जो लोग सदाचारी हुए हैं, जो चाय तक नहीं पीते हैं, संस्था में आए हैं इस्कान में या इस्कान से जो कनेक्टेड हैं, चाय तक नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते भूलकर भी, जुआ नहीं, शराब नहीं, सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं। कुछ लोग आश्चर्य करते हैं ये कैसे लोग हैं, कुछ खाते पीते नहीं, खाते पीते नहीं। एक बार अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर मैं बैठा था, विमान की प्रतीक्षा कर रहा था, ऐसे जॉब कर रहा था, इसी पोशाक में सब जगह रहता हूं। तो कुछ लोग आश्चर्य से मुझे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। वहां बड़े शिष्टाचार है इस विषय में, आप किसी पर ज्यादा देर देख भी नहीं सकते। अगर सू कर देगा कि हमको ये देख रहा है, हमारा उपहास कर रहा है, तो अब देख भी नहीं सकते। कभी कभी हमको देख रहे थे, एक व्यक्ति उठ करके आकर मेरे सीट पर, सीट के पास बैठ गया। तो फिर कहते हैं, वो पूछा इंग्लिश में कि आप किस इंस्टीट्यूशन में हैं, किस संस्थान के हैं। तो मैं कहा इस्कान, तो नहीं समझा इस्कान कहने पर। तो मैं जप रहा था हरे कृष्ण कह करके, तो मैं इस्कान का हूं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कहता है यू आर हरे कृष्ण, तो मैं कहा यस यस हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण समझ गया, क्योंकि दुनिया में प्रचार है हरे कृष्ण, सिंगर हरे कृष्ण। तो कहा कि ये हरे कृष्ण के जो सदस्य हैं, सुना कि बहुत नहाते हैं, तो स्नान बहुत करती है। तो फिर मैं कहा कि हाँ, तो फिर कहता है तो इतना शरीर को पानी में भिंगोने से क्या फायदा है, बार बार शरीर पर पानी डालना, नहाना, जब वो ठंडा देश है तो वही वहां स्नान करने वाले तो सप्ताह में एक दिन कर लिए यही काफी है, और वहां की तो बात छोड़िए, यहां ही भारतवर्ष में कुछ लोग हैं एक बार शुक्रवार को नहाए तो दूसरे शुक्रवार को, जुमा से जुमा, बस एक जुमा को नहा लिए दूसरे जुमा को नहा लेंगे। और वह भी बंडी स्नान, आधा इधर से उधर से, नहाना तक नहीं जानते हैं लोग, और आश्चर्य करते हैं कि हरे कृष्ण वाले बहुत नहाते हैं। तो वो कहा कि ये हरे कृष्ण वाले बहुत इस विषय में फेमस है, ये प्रसिद्धि है कि वो लोग बहुत नहाते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, सही है? तो मैं कहा ये सही है। तो एक बार स्नान करना भी उनके लिए बहुत स्नान था, कि जो महीने में या सप्ताह में एक बार नहा लेता है, तो रोज नहाना उसके लिए आश्चर्य की बात है। तो नहाते नहीं हैं, हमने देखा कई लोगों को उठ करके जूता पहने हुए शौचालय जाते हैं, और शौचालय में अखबार लिखा रहता है, वो न्यूज पेपर, जब शौच हो रहे हैं पढ़ रहे हैं। मैं तो जब शौचालय में अखबार देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं कहा इस न्यूज पेपर को टट्टी घर में ही पढ़ना चाहिए। मैं कहा ठीक कर रहे हैं, और सभी घरों में जो भक्त लोग हैं उनके घर में भी अगर अखबार है तो शौचालय में रखा रहता है, और जूता पहन करके जाते हैं, और शौच होने के बाद तो मुख धोने का, कुल्ला करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, इतना गंदा पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, वो टिश्यू पेपर से सारी शुद्धि कर लेते हैं। पानी का कोई प्रयोग नहीं। तो मैं तो हैरान हो गया जब गया एक भक्त के घर में, तो देखा कि वहां टिश्यू रखा हुआ है। हम लोग तो गांव के आदमी है, हम लोगों को पानी न मिले तो ऐसे ही जी उबेगा, हूल आएगी, उल्टी हो जाएगी वास्तव में। तो हम गए, इसके बाद हमने कहा हमको एक बोतल में पानी दीजिए। तो वो समझ गए, ठीक है ठीक है ठीक। तो सबसे पहले मैं तो किसी घर में जाता हूं तो सबसे पहले मैं पानी मांगता हूं, ये शौच के बाद अंग धोने के लिए पानी चाहिए। तो जहां इसका कोई विचार नहीं है कि हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, शौच के बाद हाथ धोने का कोई वहां विचार नहीं है, बहस करने पर कहता है अरे हाथ गंदा है, नहीं हाथ में नहीं लगता है, वो क्या है? ऐसे ऐसे करते हैं इस प्रकार के विचार, तो कोई शुद्धि नहीं है। और अब उनके चेला, अंग्रेजों के चेला भारतवर्ष में भी बढ़ गए, सब जगह अब बड़े बड़े होटलों में यही सब होने लगा। अच्छा है, पानी बचाते हैं, पानी कम खर्च करते पानी कम खर्च करते ये तो ऐसे लोग हैं जैसे कोई लड़का हो, वो अपने से अंग नहीं धो सकता है, चाहे गाय भैंस सब नहीं धोता, वो तो बेचारे नहीं धोते फिर भी पवित्र रहते हैं। पशु कभी मुंह नहीं धोए है लेकिन फिर भी उनका दांत चमकता है ना। पशुओं को भगवान ने ऐसा बनाया है कि साल भर में एक दिन भी दत्वन नहीं करते हैं फिर भी ठीक। तो ये मनुष्य पशु होने जा रहे हैं, खाने के बाद भी मुंह नहीं धोते हैं, मैं देख देख कर कह रहा हूं, खाते हैं पेपर से पोछ लेते हैं और मुंह भी ऐसे पेपर से पोछ कर चल देते हैं। और इसीलिए डेंटिस्ट की संख्या बढ़ रही है, दांत का डॉक्टर चाहिए, गली गली में दांत का डॉक्टर चल रहा है ना, अब इंडिया में बढ़ने लगा सब जगह। और इसको लोग अच्छा मानते हैं, क्या हाथ पैर धोना है, ये करना है, वो करना है, फ्रेश रहा है, इसको विकास मान रहे हैं, इसीलिए इतनी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। भागवत के पुरंजन उपाख्यान में लिखा है कि चंडवेग के जो साथी हैं पुलिस हैं, वो पहले पुरंजन नगर के सभी द्वार को घेर लेते हैं, द्वार को घेर लेते हैं पुरंजन को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो उनको कहा गया है कि उसकी सेना में सब जवान रहते हैं, जवान शब्द का प्रयोग किया गया, यवन मलेच्छ यही रहते हैं उसकी सेना में, काल वेग चंड वेग मान मृत्यु काल। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसके परपोर्ट में, सभी गेट को घेर लेते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में ये जो छिद्र है, नौ मुंह है और कान है, नाक है, नीचे के दो अंग हैं, तो जो इनको साफ नहीं रखता है तो वहां से रोग उत्पन्न होते हैं, यही बहुत से जवन और मलेच्छ हैं। तो प्रभुपाद जी वहां प्रपोर्ट में लिखते हैं कि सचमुच के मलेच्छ और जवन गंदा रहते हैं, वहां प्रपोर्ट में लिख रहे हैं। तो रोग कहां से चलता है, रोग तो पेट वगैरह से चलता ही है लेकिन शरीर के छिद्रों से भी चलता है रोग, इसीलिए इनको साफ रखना चाहिए, बिल्कुल साफ रखना चाहिए, कान की गंदगी को निकालना, दांत की गंदगी को निकालना, नाक के और पेट को साफ रखना, तो व्यक्ति का जीवन लंबा होता है, आयु लंबी होती है। तो जो भी हो, ये क्राइम पर बात चली थी, तो क्राइम मिटेगा संसार का, सब जगह बंधुत्व छा जाएगा, जब हम भगवान की बात सुनेंगे, भगवद गीता सुनेंगे, भगवान की लीलाएं सुनेंगे भागवत से, अपने आप ही हो जाएगा। आजकल संसार में कुछ ऐसे विचारक हैं जो चिंता में पड़ गए हैं कि क्या होगा मनुष्यों का, इतना द्वेष बढ़ रहा है, इतना ये बढ़ रहा है, इसी बढ़ रहा है, राष्ट्रीयता की भावना, जातीयता की भावना बढ़ रही है चारों तरफ, जो जिस देश में है वहां इतनी राष्ट्रीयता की भावना है कि वो दूसरे राष्ट्र का नाम तक नहीं सुनना चाहता, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, तो ये सब मन की गंदगी है, ये बढ़ रहा है। उस लोग बहुत चिंतित हैं कि कैसे मिटेगा क्राइम, कैसे लोग शुद्ध होंगे। तो भारत के मनीषियों ने और विशेष करके श्रील प्रभुपाद जिनको जिनको शांति का दूत कहा गया, अम्बेसडर कहा गया, इन्होंने उपाय बताया। सरल उपाय है, भगवान का नाम गाओ और प्रसाद खाओ। अपने घर में जो प्रसाद भोजन बन रहा है उसको भोग लगा करके खाओ और भगवान का नाम लो। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि दस पांच मिली निज दुआरे बसिया, कीर्तन करी है सब हाथे ताली दिया। चैतन्य महाप्रभु से उपदेश पूछते हैं कुछ लोग, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुए, हम क्या करें प्रभु, हम क्या करें। तो कहते हैं कि दस पांच मिल करके निज दुआरे बसिया, अपने दरवाजे पर अपने घर पर ही बैठ करके और कीर्तन करी है सब हाथे ताली दिया। कीर्तन करना, अगर कीर्तन करने के लिए ढोलक भी नहीं है, झाल भी नहीं है, मंजीरा नहीं है, तो हाथ से ताली बजा बजा कर कीर्तन कर। कीर्तन करी है सब हाथे ताली दिया, हाथे ताली दिया। ये ताली बजाने से ब्लड प्रेशर आदि रोग भी दूर होता है, ये रामदेव स्वामी का। तो कीर्तन में तो अपने आप ही ताली बजाते हैं, यह एक व्यायाम भी है। और उछल, जो भक्त कीर्तन में उछलेगा कूदेगा, उसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बहुत घृणा से देखेंगे, भाग जाएंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे। ये तो अब नाचने लगा कीर्तन में, इसके पास चलो अब हटो, गुजारा नहीं होगा। उस आलसी के पास चलो जो नाचता नहीं है, गाता नहीं है, व्यायाम नहीं करता है, उसको घेरो। रोग है, ऐसे व्यक्ति को घेरते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दस पांच मिले निज दुआरे बसिया, बसिया मैंने बैठकर कीर्तन करी है सब हाथी ताली दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अवतार लिए भक्ति के प्रचार के लिए कहते हैं कीर्तन करना, कीर्तन करना, कीर्तन करने के लिए कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बस भजन क्या है, भक्ति क्या है, खाना और गाना। वो कहते हैं खाना और गाना, तो खाना कौन नहीं जानता है। अंतर इतना ही करना है कि भगवान का प्रसाद खाना है। जैसे हम लोग यहां सात दिन रहे तो खाए ही, चाहे सालों भर खाते ही रहते हैं जहां जाते हैं, लेकिन भगवान का को अर्पित किया हुआ भोजन करते हैं। भात रोटी दाल सिंपल भोजन है, सब्जी भगवान को अर्पण करते हैं, अर्पण करके खाते हैं, खाते तो है ही, तो खाना तो सभी जानते हैं। ये रहता कोई खाना नहीं जानता कि कैसे खाया जाएगा, इसको नहीं जानता तो उसको बताने में मेहनत पड़ेगी, है ना। और नहीं खाए, खाना मालूम ही नहीं है या खाने में परिश्रम है, तो उसको बताया जाता कि ऐसे खाओ, ये खाओ, खाओ। खाने में तो कितना धक्का हो जाता है, खाने में देख ही रहे हैं, तो सभी जानते हैं खाना है। तो खाना है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा काम है गाना, एक और चीज। गाने के लिए भी महामंत्र में कोई बहुत भारी राग ताल की अपेक्षा नहीं है। म्यूजिक कॉलेज में जाकर के ट्रेनिंग लेना इसे कोई जरूरी नहीं है, कोई भी गा सकता है। और एक और जोड़े हैं प्रभुपाद जी, नाचना, सभी नाच सकते। देखते हैं बच्चे उछलते हैं, स्त्रियां उछलती हैं, नाचती हैं, सभी लोग, एक उत्साह आ जाता है भगवान के नाम पर। और भगवान के नाम पर जो शरीर थिरकता है, नाचता है, तो इसमें पाप रह ही नहीं सकता है। भगवान के कीर्तन में नाचने वाला शरीर परम पवित्र माना जाता है। ऐसा वर्णन है चैतन्य चरितमृत में कि जो भक्त नाचते थे कीर्तन में, तो दूसरे लोग चरण छूने चाहते थे उनका, कि इसमें पवित्र हो जाए, ये ये व्यक्ति नाच रहा है भगवान कीर्तन पर, ये भगवान का बहुत बड़ा आदर हुआ, भगवान के नाम पर नाचना गाना, भगवान का नाम गाना नाचना। और यदि कोई नहीं नाच सकता तो उसके लिए भी उपाय बताया गया है। उसके लिए उपाय है पैर को बाएं दाएं करना खड़े होकर के। सभी लोग नाचना नहीं जानते हैं या कुछ रोग के कारण नहीं नाच सकते हैं, तो बाएं पैर को दाहिने, दाहिने पैर को बाएं, ऐसे ऐसे करते रहे। और हाथ में यदि शक्ति है तो ऊपर रख, ऐसे 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 ऐसे। इसको लोग कहते हैं स्कान में ये स्वामी डांस है। स्वामी मतलब भक्ति वेदांत स्वामी, ये बताए ऐसे कि ऐसे करो स्वामी डांस। सिंपलेस्ट सबसे एकदम प्रथम नाच ये खड़ा है और डोल रहा है, तो यह भी एक नाच का अंग मान लिया जाएगा। तो किसी मान लीजिए किसी दुल्हा के बारात में लोग चले गए, तो जो भी जाए चला गया तो वो बारात कहा जाएगा, चला गया। कोई सवारी से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई कार से जाता है। तो कार से जाए चाहे साइकिल से जाए चाहे पैदल, बराती है ये माना जाता है। इसी तरह से अगर कोई इस तरह से केवल डोले खड़ा हो जाए, हाथ उठा ले, तो माना जाता है कि भगवान का कीर्तन कर रहा है। और कोई बहुत जबरदस्ती बुलवाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग प्रचारक लोग कीर्तन कराते हैं तो कहते हैं बोलिए नहीं तो अगले जन्म में गूंगे हो जाएंगे। वाह, बेचारा भगवान के कीर्तन में आया है और नहीं बोलेगा तो गूंगा हो जाएगा। सुनिए जरा इनका विचार, हाथ नहीं ऊपर करोगे तो अगले जन्म में लूला हो जाओगे। ऐसे ही फालतू प्रचार करते हैं कुछ लोग, बोलना नहीं जानते। कोई भगवान के कीर्तन में आकर के बैठ भी जाए तो क्या भगवान उसको लूला बनाएंगे? जरा सोचिए, बोलने वाले थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं। और जो भगवान का नाम सुन रहा है कान से और मान लीजिए न बोले तो भगवान उसको गूंगा बना देंगे, तब तो भगवान जैसा खतरनाक कोई नहीं है। अच्छा है चुपचाप अपने घर में रहना है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं जिसको भगवान ने हाथ दिया है हाथ ऊंचा करो। अरे बाप, जिसको भगवान ने हाथ दिया है हाथ ऊंचा करो। तो कोई कोई ऐसे भी है क्या कि भगवान ने हाथ नहीं दिया है, लेकिन वो बोलने वाले सोचते हैं कि बस मैं वेदव्यास जी का अवतार हूं और जो बोल रहा हूं बस, और हाथ खड़ा करो ऊंचा करो वो लोग कहते हैं, और ऊंचा करा करके भाषण करते रहते हैं, बुलवाते भी नहीं है। तो कई लोगों के हाथ तो दुख जाते हैं, वो नीचे करते हैं, डरते हुए नीचे करते हैं। नहीं तो कहता है कि अगर हाथ ऊंचा नहीं करोगे तो लूला हो जाओगे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भगवान के कीर्तन में कोई आ गया सुन रहा है। एक बार बॉम्बे की घटना है, मैं बैठा था मंगला आरती के बाद, तो उस समय नियम था कि गेट बंद कर दिया जाता था, गेस्ट हाउस के तरफ का और मंदिर से निकलने का उधर का, दो दरवाजे हैं, बंद कर दिया गया। सभी भक्तों को मंगला आरती के बाद जप करना होता था। तो एक भक्त था वो चुपचाप ऐसे बैठा था, बोल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा था। तो टेम्पल कमांडर प्रसन्नात्मा था साउथ इंडिया का, वो उसके पास गया, कहता था तुम बोल कर क्यों नहीं जप करते हो, क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो। तो वो कहा इतने लोग बोल रहे हैं उसको सुन रहा हूं। अब वो क्या कहे कि नहीं सुनना चाहिए, कि भगवान का नाम तो सुनो चाहे बोलो दोनों एक है। जाकर नाम सुनो तो शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, महाराज दशरथ कह रहे हैं, जिनका नाम सुनने से शुभ होता है वो प्रभु हमारे घर में आए। तो वो कहता है नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि नाम बोलना चाहिए। तो वो कहा और सुनने से मना किए हैं, सुनने से मना किए हैं क्या? अब दोनों में हुआ झगड़ा है। तो वो प्रश्नात्मा मेरे पास आया, मेरे गुरु भाई था राधा गोविंद, इसको समझाओ, ये बोलकर जप नहीं कर रहा है। तो कहा कि महाराज मैं सुन रहा था, सब ये लोग जप कर रहे हैं तो उसको सुन रहा है। तो मैं कह दिया ठीक है सुन रहा है ना, सुनने दो, क्यों फोर्स करते हो बोलने का? सुनना बोलने से कम नहीं है। अगर सुन रहा है, रियली सुन रहा है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुपचाप रहना चाहिए। बोल करके जप करे और सुने भी तो दोनों परम श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे बोलना एक श्रेष्ठ बात इसलिए है कि जिह्वा भी इंगेज्ड है, वाणी भी लग रही है और शरीर कान भी। कान से सुनना ये तन से भजन हुआ है, और जिह्वा से बोलना ये वचन से भजन हुआ, और मन में याद करना मन से भजन हुआ। मन वचन और तन तीनों लगना चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान के नाम उच्चारण, ये ठीक है। कुछ लोग आलसी होते हैं, बोलते नहीं हैं, चुपचाप माला पकड़ करके बैठते हैं, ये तो कोई जप नहीं है। माला पकड़ लेने से ही जप नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं कि माला पकड़े ऑटोमेटिक 16 माला हो गया। उसको बोलना चाहिए हरे
कृष्णा 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 हरे
हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
आलस से बस नहीं बोलते हैं, किसी काम को बहुत आसान चाहते हैं, हमको बोलना न पड़े, हमको बस माला लेकर बैठ गए, ये जप नहीं है। इस पर हमें एक कथा याद आती है, एक पंडित जी थे, लोक में तो बस पंडित और जादव इसी की कथाएं हैं। तो पंडित जी थे, बहुत ज्ञानी थे, उनकी स्त्री बहुत पतिव्रता थी, इतनी पतिव्रता कि पंडित जी के लिए वो भोजन बनाती थी, सब करती थी, भगवान को भोग लगाती थी, और पंडित जी खाने बैठते थे तो एक हाथ से वो पंखा झलती थी और दूसरे हाथ से शान शान करके कवर डाला करते थे उनके मुख में। पंडित जी कभी हाथ नहीं लगाते थे भोजन में, भोजन में वो नहीं सानते थे, वो सानते थे, सब करते थे, भोजन पकाना और सानना लेना देना, तो और एक हाथ से पंखा झलना। एक दिन की बात थी, वो पंखा झल रही थी और पंडित जी खा रहे थे अपने मस्ती में, फिर भी उनको पसीना आ रहा था, पंडित जी को भारी मेहनत पड़ रही थी खाने में। तो पत्नी ने पूछ दिया कि भोजन मैं बनाई, भगवान को भोग लगाई और मैं प्रसाद सान करके आपके मुंह में दे रही हूं, फिर भी आपको पसीना आ रहा है, जब पंखा भी झल रहे हो। तो पंडित जी कहते हैं हाँ तुमने भोजन बनाया, परोस रही हो ठीक है, और चबा तुम्हारा बाप रहा है। क्या चबाने में मेहनत नहीं है क्या? अरे बाप रे बाप। तो इतना परिश्रम कर रहे पंडित जी चबाने में, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुख में कवर डाला जा रहा है फिर भी चबाने में मेहनत पड़ रहा है, तो उचित था कि वो स्वयं साने, है ना, उस स्वयं साने उठावे। उचित तो ये था कि स्वयं भोजन भी बनावे, क्योंकि मान लीजिए इतना नहीं हुआ तो कम से कम अपना सान कर खाना चाहिए। तो पत्नी पंखा भी चल रही है और भोजन भी मुंह में दे रहे, फिर भी कहते हैं कि चबाने में बहुत मेहनत है। चबाने में मेहनत, ऐसा नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। भगवान का नाम लेना है तो बोल बोल करके लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
राम हरे राम 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 हरे।
सारी दुनिया में इस कान में आप जाएंगे जहां भी तो भक्त लोग बोल बोल करके जप करते हैं। शास्त्र यही कहता है, उच्च ही प्रशस्तम, नाम का उच्चारण करके जप करना यही प्रशस्त है, यही ठीक है। और वैसे मान लीजिए किसी का शरीर बहुत कमजोर है, बेचारा नहीं जोर से बोल सकता, तो धीरे धीरे बोलता है ठीक है। और कोई नहीं भी बोलता है, चुपचाप माला पकड़ा है, फिर भी उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि बोलो बोलो बोलो, ठीक है। हाँ, कम से कम ओठ हिलना चाहिए, उपांशु जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, उपांशु माने ये भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर ओठ हिल रहा है तब ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आवाज नहीं, वॉल्यूम अपना कम किया है तो ठीक है। तो इस तरह से भजन की वास्तव में सुविधा है, प्रोत्साहित किया जाता है जनता को। लोग समझते हैं कि भजन करने कठिन काम है, इसका कारण यह है कि प्रचारक गलत प्रचार कर देते हैं। किसी ने माला लिया तो कहते हैं देखो अगर बीच में माला छोड़ दिया तो तुम पर बहुत पाप लगेगा। मैं कुछ नहीं पाप लगेगा, तो उसने अगर दो चार माला जप किया, दो चार दिन भी किया तो बहुत बड़ा काम किया ना। तो नहीं करना, अब उसको ऐसा बता देते हैं कि छोड़ दोगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, तो ग्रहण ही नहीं करता है। अरे बाप रे बाप, इतना खतरा कौन ले, तब हम चालू ही नहीं करेंगे। प्रचार करने वाले गलत बताते हैं। भगवान का नाम तो ऐसा है कि भाव कुभाव अनखया लसहू नाम जपत मंगल दिशि दशर, सब जगह मंगल है। अगर एक ही माला जप कर रहा है ठीक है, दो माला कर रहा है, सोलह माला कर रहा है, आज किया कल नहीं भी किया कोई बात नहीं, लेकिन जपना मंगल है। तो जो इस बात को सुनेगा तो जपेगा ही, लेकिन कदाचित नहीं जपा तो कहने उठरी तब तो बहुत भारी अपराध हो गया। तो कौन अपराध करे, नहीं जप करना है ठीक है, लोग समझते हैं तो छोड़ दो, अपराध नहीं करे। बहुत सरल है भक्ति मार्ग, भगवान का नाम जैसे भी लेना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ने की फुर्सत हो, पढ़ने में समझ में आए तो पढ़ना चाहिए, कोई वैष्णव मिल जाए सुनाने वाला तो सुनना चाहिए, और सुनने वाला मिल जाए तो बोलना चाहिए। कोई किसी भी तरह से भजन कर सकते हैं। ये भक्ति बहुत सुगम मार्ग है, सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चा वृद्ध ज्ञानी मूर्ख कोई भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम तो इस खड़िया गांव में श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। वास्तव में यह सब भगवान की कृपा से ही संभव होता है, भगवान अपने भक्तों के हृदय में प्रेरणा किए तो ये सब आयोजन किए। और इस बार के आयोजन में रोहिणी कुमार प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है। तो हृदय से धन्यवाद करना चाहिए, मैं तो एक बार नहीं कर दिया था। तो कर नहीं, नहीं खबर भेज दीजिए बॉम्बे वालों को कि वहां बहुत ठंडा पड़ता है, वहां बहुत दिक्कत होती है, वहां न आने, ऐसे मेरे मन में आने लगा, नहीं नहीं बुलाना ठीक नहीं है। तो बॉम्बे फोन कर दिया राजमंडल प्रभु को कि नहीं नहीं वहां बता दीजिए कोई न आवे, बहुत दिक्कत होता है वहां। और इसके बाद तब तक रोहिणी कुमार को पता लगा, महाराज रिजेक्ट कर दिया। मैंने दिल्ली में भी फोन कर दिया कि नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, कथा नहीं होगी। तो ये बेचारे आए तो केशव कुंज में वृंदावन में मंडरा रहे थे कि कब अवसर मिले कि बात हो, कब अवसर मिले कि बात हो। तो मैं समझ गया, मैं भागवत लिख रहा था केवल इसी के लिए नहीं कि खड़ी है कथा कहना है, मैं लगा हुआ था अपने काम में। तो वे आए तो मैं कह दिया कि तब कुछ कहना तो कहल चाहता का हम तो समझ रहे थे कि क्या कहेंगे, कुछ कहल चाहता का कुछ कहना चाहते हैं क्या। महाराज बड़ी आदमी हमरा के दोष दी है, हमरा के जिए ना दी, हम खटिया के आदमी। अच्छा जिए ना दी है मैंने गाड़ी दी हम कि तू ऐसे करके करा के या फिर ना करोले कथा। हम मीटिंग करके आई बानी, नोएडा में मीटिंग भई रहे, के कब प्रसाद दी लिस्ट देखलन, लिस्ट बन गई बा, हई हो गई बा, हई हो गई बा, गौर कृष्ण तैयार बानम। तो ये ऐसे बोले कि नहीं इके जरूर करी, ऐसे करी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं कहा ठीक है ठीक है ठीक है, कथा होगी। तो ये रोहिणी कुमार प्रभु का उद्योग है, उन्होंने उपाय किया, नहीं तो ये कथा कौनसी थी नहीं होने वाली थी। तो भगवान इस तरह से प्रेरित किए, तो भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से ये कथा संभव हुई। और बहुत खुशी की बात है कि 7 दिन पूरा हो गया शांति के साथ। कहीं एक दिन के आयोजन में भी भय लगा रहता है कि कोई झगड़ा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। ऐसे खाने पीने में भी हो जाता है झगड़ा, कहीं हाथापाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, नहीं हुआ, कुछ शांति से हुआ। बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। और आप सबको बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया, प्रसाद खिलाया, प्रकाश की व्यवस्था किया, और बहुत अच्छा लगा। मैं तो कथा के बाद पढ़ने में लग जाता था, मुझे बहुत कम अवसर मिलता था कि मैं लोगों से मिलूं, बातचीत करूं, क्योंकि मैं अपना मन कंसंट्रेटेड रखना चाहता था, एकाग्र। तो जिन भक्तों को नहीं मिला अवसर कि हम पर्सनल मिल पाए तो क्षमा करेंगे। भगवान कृष्ण के आधार पर हम सबका संबंध है, कृष्ण से प्रेम कीजिए, यही संबंध है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीतापति प्रभु को, गौर कृष्ण को, और भी बहुत से भक्त इसमें सहयोग किए हैं, और सुंदर गोविंद दास उनको तो आज गौर कृष्ण कह रहे थे, सुंदर गोविंद कुछ कहे, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। कुछ कुछ प्रसाद लाए थे अमरपुर से भक्त बाटी, अभी खा लीजिए, ले लीजिए महाराज, ठंडा हो जाएगा। कहे नहीं, पेट भरा हुआ है, अब नहीं था। तो कहते नहीं नहीं, यही खा लीजिए यही खा लीजिए। तो मैं कहा कि यही खाऊंगा, कितने लोग आएंगे, बुरा लगेगा, हम बाद में खाएंगे, रख दीजिए रख दीजिए। तो नहीं, हम बंद कर देते हैं, केवल कोई नहीं आएगा। तो गौर कृष्ण कहते हैं अब तुम लगौला अपन फिलॉसफी, तू जा कर कि नहीं है जैसे जो पहले है जैसे। तो अब सुंदर गोविंद चल दिए, चूंकि अब गौर कृष्ण तो उनके गार्जियन है, गुरु जैसे है, डांट दिए तो बेचारे चले गए। लेकिन इस लड़के ने भी बहुत मेहनत किया है, कुरुक्षेत्र में भी और खटिया में भी, खुशी के साथ। और भी अनेक भक्त लगे हैं, श्याम कृष्ण जो दिल्ली से आए हैं, यहाँ के भक्त है, रहते हैं पंजाबी बाग दिल्ली में। कई 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 भक्त ने सहयोग किया है, भगवान कृष्ण सब पर अनुग्रह करें जैसे जग पत्नियों पर किए। भगवान कितना प्रेम किए जग पत्नियों से, तो वे तो सबसे बड़े प्रशंसक हैं और सर्वांतर जानी भी है, सबको जानते हैं कौन क्या किया है क्या किया। तो भगवान की प्रसन्नता सबको मिले और सबकी मति भगवान में लगी रहे, इसकी मैं कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो, मति भी लगी रहे और भगवान की कृपा बनी रहे। और इस गांव के लोगों ने जो बड़े उत्साह के साथ भाग लिया व्यवस्था में, तो उसका साक्षी मैं स्वयं हूं। मैं कई लोगों की बातों को सुना, वो कहते थे महाराज हम 7 लोगों को तैयार किए हैं और 7 दिन और होना चाहिए। 7 दिन और नहीं, भक्तों का अलग अलग प्रोग्राम है, टिकट है, काम है, वो है, अब आगे जप करते रहे यही ठीक है। लेकिन उत्साह देखा, एक भक्त कह रहे थे कि इतना सुख मिला, जल रहा था हृदय, बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कथा से कीर्तन से बहुत सुख मिला। तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संभव हुआ है। आप सब भक्त यहाँ आए जहां तहां से कथा सुनने के लिए, और भक्तों ने आयोजन किया, दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं, भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हो। और मेरी जहां तक बात है, मैं बोलता हूं तो कभी कभी मुझे वो श्लोक याद आ जाता है, जिस व्यक्ति की बाणी कठोर है वो नरक से आया हुआ है। तो कभी कभी लगता है कि मैं भी नरक से आया था, कभी कभी बहुत कठोर बोल देता हूं। खास करके भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के स्वरूप के, रूप के विरुद्ध कोई आइडिया आ जाती है तो मुख से अपशब्द निकल ही जाता है। अभी मैं कहीं पर बोल रहा था, यहां के पहले कुरुक्षेत्र में था ना, तो कोई बात आई, भगवान का वर्णन हो रहा था, कुंती महारानी भगवान के रूप का वर्णन कर रही थी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमन। तो कोई बात आ गई कि फिर भी भगवान को इस साले निराकार ही कहते हैं, अकस्मात मुख से निकल गया। मुझे बड़ा ऐसा लगा कि अरे ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए, पर ऐसे निकलता रहता है, हरामी तो क्या क्या, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। हमारा आशय किसी पर आक्षेप करना नहीं होता है, हम अपने प्रभु का गुण गाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का कोई कुत्ता होता है तो स्वामी को प्रसन्न करने के लिए वो फालतू भी भोंकता रहता है ना। अगर स्वामी के घर में कोई आवे तो कुत्ता उसको काटने दौड़ेगा, भोंकेगा। तो हम लोग तो भगवान श्री कृष्ण के कुत्ते हैं वास्तव में, अगर उनका कोई विरोध करेगा तो काटने दौड़ेंगे, कम से कम वाणी द्वारा तो भों भों करेंगे उसको। तो इस धारणा से मेरे मुख से अपशब्द निकलता है, लेकिन और किसी कारण से नहीं निकलता। ये बात कठोर हो जाती है, वैष्णव लोग इसको छान करके ग्रहण करेंगे, उस छोड़ करके शुद्ध भगवान का जो गुणगान हुआ है। तो कभी कभी हमारे पास ऐसा आया है, आप ठीक नहीं बोले, ये नहीं बोले, वो नहीं बोले, तो लगता है कि हाँ जरूर नहीं बोलना चाहिए, क्या जरूरत, अपना जो काम है करना है, दूसरा क्या कर रहा है, उससे मतलब क्या है। तो आप उसके लिए क्षमा करेंगे और हमको भी आशीर्वाद देंगे कि भगवान कृष्ण में हमारी मति लगी रहे, सदा प्रेम बढ़े। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।